शान ने उसका भावहीन चेहरा देखा तो गुस्से में उसकी बाह पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। आरवी की निगाहें अब उसके चेहरे की तरफ उठ गईं, पर चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। शान ने उसकी आंखों से आंखें मिलाते हुए गुस्से में सवाल किया, क्यों गई थी तुम वहां? बहुत मन कर रहा था अपने उस बाप से मिलने का। शान का सवाल सुनकर आरवी कुछ हैरान हो गई और कुछ जवाब नहीं दे सकी। उसकी खामोशी शान के गुस्से को बढ़ा गई। उसने उसकी बांह पर अपनी पकड़ कसते हुए गुस्से में जबड़े भींचते हुए अपना सवाल दोहराया, कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो, क्यों गई थी वहां? आरवी की बांह में दर्द होने लगा था, पर उसने दर्द जाहिर नहीं होने दिया और बिना किसी भाव के बोली, मैं खुद से वहां नहीं गई थी, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। मुझे लगा कि वो गाड़ी आपने भेजी है, इसलिए मैं उसमें बैठ गई और वो गाड़ी मुझे वहां लेकर गई थी। मैंने वापस आने की कोशिश की थी, पर उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। आपको फोन करने लगी तो मेरा फोन भी ले लिया। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो पूछ लीजिए उनसे, या मेरा पर्स चेक कर लीजिए, उसमें फ़ोन नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको फ़ोन करने लगी थी तो उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया था। मैं जानती हूँ कि आपको लग रहा होगा कि आपसे बचने के लिए मैं वहाँ गई थी, पर ऐसा नहीं है। अगर आप मुझे मार भी देंगे तब भी मैं उस जगह जाना पसंद नहीं करूँगी जहाँ वो इंसान रहता है जिसके दिए धोखे की वजह से मुझसे मेरी माँ छिन गई। मुश्किलों से डरती नहीं हूँ मैं जो पीठ दिखाकर भाग जाऊँगी। मैं तब तक यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी जब तक आपका बदला पूरा नहीं हो जाता। आप मुझसे नफ़रत दिखाते हैं, और जब तक मैं बर्दाश्त कर सकूंगी मैं आपकी नफ़रत को सहकर भी सिर्फ मोहब्बत निभाऊंगी। और जिस दिन मेरा सब्र जवाब दे जाएगा मैं सामने से आपको बताकर यहाँ से जाऊंगी, क्योंकि पीठ दिखाकर बुजदिलों की तरफ भागना मेरी फितरत नहीं। मैंने मुश्किलों का सामना करना सीखा है अपने पिता से, और वो भी उन पिता से जिन्होंने मुझे पाला है, जिनके दिए संस्कार मेरे रगों में खून की तरह बहता है। और तुम्हारे रगों में बहता खून एक धोखेबाज इंसान का है। तुम उस इंसान की बेटी हो जिससे मैं बेइंतहा नफरत करता हूँ। तुम्हारी रगों में खून के साथ धोखा और फरेब बहता है, और तुम्हारी असलियत जानने के बाद भी मैं तुम पर भरोसा करूंगा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? आरवी शान की बात सुनकर कुछ पल स्तब्ध सी उसे देखती रही, फिर दर्द भरी आह भरते हुए बिना किसी भाव के बोली, ठीक कहा आपने, आप सब ठीक कहते हैं, बिल्कुल सही है आप, मैं ही गलत हूँ, तभी तो ये सब सह रही हूँ। मैं धोखेबाज हूँ, सब झूठ कहती हूँ, पर आप सच्चे हैं। आपने कभी जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया, कभी झूठ नहीं कहा। अचानक ही मुझे कुछ याद आया कि आप कितने अच्छे हैं, चलिए आपको भी बता देती हूँ। इसके बाद आरवी कुछ सेकंड चुप रही, शायद खुद को मजबूत बना रही थी, और शान भौं से कोड़कर उसे घूर रहा था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आरवी ने फिर से कहना शुरू कर दिया, तुम मेरी वाइफ हो, और अब इस सच को कोई दूसरा सच नहीं बदल सकता। तुम्हारे लगों में किसका खून बहता है और किसका नहीं, इससे मुझे कोई फर्क पड़ता, मुझे फर्क सिर्फ तुमसे पड़ता है। हो सकता है तुम्हारे पापा अच्छे इंसान ना हो, पर तुम्हारी माँ अच्छी थी, और तुम अपनी माँ पर गई हो क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारी रगों में किसका खून बहता है? उस खून में आंटी की परवरिश का रंग खुला हुआ है, और उनकी परवरिश पर मैं कभी सवाल नहीं उठा सकता, इसलिए तुम्हें इन बकवास बातों के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने नहीं कहा होता तो मैं तुम्हारे पिता के बारे में पता करवाने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि मुझे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसका खून तुम्हारी रगों में बहता है। मैं तुम्हें जानता हूँ, और तुम बहुत अच्छी हो, मेरी पत्नी हो, और इस सच्चाई के आगे बाकी किसी सच्चाई का कोई वजूद ही नहीं है। आरवी की बात सुनकर शान के भाव कुछ बदल से गए, वो हैरान परेशान सा उसे देखने लगा। आरवी ने उसके कन्फ्यूजन भरे भाव देखे तो दर्द भरी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोली, लगता है आपको कुछ याद नहीं आया, चलिए मैं ही बता देती हूँ। अभी अभी मैंने जो भी कहा वो शब्द आपके ही थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें की थीं आपने, पर हकीकत में क्या किया आपने? मैंने मना किया था फिर भी मेरे पिता का पता लगवाया, मेरी मां की परवरिश पर मेरी रगों में बहता खून भारी पड़ गया। अपनी नफरत और बदले में आप ये भूल गए कि मैं आपकी पत्नी हूँ। आपने मेरे साथ जैसा सलूक किया वैसा तो एक अच्छे घर का लड़का किसी अनजान लड़की के साथ भी नहीं करता। आज आपके लिए सिर्फ एक बात मायने रखती है कि मैं आपके दुश्मन अमरजीत ठाकुर की बेटी हूँ। आज की आपकी नज़रों में सिर्फ एक सच्चाई है कि मेरी रगों में उस इंसान का खून बहता है जिससे आप बेइंतहा नफरत करते हैं, और उस नफरत की आग में आप मुझे जलाना चाहते हैं। मुझे झूठा और धोखेबाज कह रहे थे ना आप, अब अपने बारे में क्या कहेंगे? आप तो इतनी जल्दी अपनी ही कही बात से मुकर गए, फिर आप पर कोई भरोसा कैसे करे? आरवी रुकी, उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने दर्द भरी आह भरते हुए आगे कहा, नफरत करते हैं ना आप मुझसे, दर्द देना चाहते हैं मुझे तो शौक से दीजिए, पर मुझे जिन गुनाहों की सजा दे रहे हैं वो बता तो दीजिए। मेरे पिता का बदला लेना चाहते हैं ना मुझसे, तो पहले मुझे बताइए कि ऐसा क्या किया है उन्होंने जिसका बदला लेने के लिए आप इतना नीचे गिर गए कि अपनी ही पत्नी को भरी महफिल में बेआबरू कर दिया आपने। आरवी की आंखों में नमी और चेहरे पर दर्द उभर आया था, पर सुरात से जो सवाल अंदर ही अंदर उसे तोड़ रहा था आज उसने वो सवाल शान से पूछ लिया था। इस वक्त उसके चेहरे पर दर्द के साथ साथ नाराजगी के भाव थे। शान को उससे इस सवाल की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी,
इसलिए वो शॉक्ड रह गया था। आरवी अपने जवाब का इंतजार कर रही थी। शान पहले तो कुछ पल हैरानी से उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर दर्द, बेबसी और शर्मिंदगी के भाव उभर आए। आरवी से निगाहें तक न मिला सका वो। गुनाहगार था वो भी आरवी का, और इसका एहसास था उसे, लेकिन उसकी नफरत उसे माफी नहीं मांगने दे रही थी, क्योंकि आरवी के सामने वो कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। आरवी के सवालों के जवाब थे उसके पास, पर वो कुछ कह नहीं सका। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने आरवी की बांह को छोड़ दिया और कदम पीछे हटाते हुए सख्त लहजे में बोला, तुम्हारे सवालों के जवाब मैं उसी दिन दे चुका हूँ, फिर भी अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो ये तुम्हारी गलती है। एक ही बात को बार बार दोहराना मेरी आदत नहीं, इसलिए अब मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाला। और एक बात अपने दिलो दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि तुम यहाँ से तब तक कहीं नहीं जा सकती जब तक मैं तुम्हें जाने को नहीं कहता। तुम्हें यहीं रहना होगा और वो सब करना होगा जो तुम्हें कहा जाए। अपने बाप के कर्मों की सजा भुगतनी होगी तुम्हें, जिससे जीते जी अब तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। अब से तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी इसी घर में। जब तक मैं नहीं कहता तुम्हारे कदम भी इस घर से बाहर नहीं पड़ने चाहिए, और अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर बाहर जाने की गुस्ताखी की तो उसकी सजा के लिए भी तैयार रहना। शान ने उसको धमकी दी और तेज कदमों से रूम से बाहर निकल गया। आरवी ठगी सी खड़ी रह गई। आज उससे उसकी बची खुची आजादी भी छिन गई थी। एक बार फिर उसे उस गुनाह की सजा सुनाई गई थी जो उसने किया ही नहीं था, पर उसने अब खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसे कैसे भी करके सच्चाई पता लगानी थी। आरवी ने अपने होठों को गोल करते हुए गहरी सांस ली, फिर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होकर नीचे पहुंची तब तक अंशु भी आ गई थी। आरवी खुद को एकदम सामान्य दिखा रही थी। उसका आगे का आधा दिन अंशु के साथ ही बीता। आज फिर रात होने पर भी शान घर नहीं लौटा। अपने सारे काम निपटाने के बाद आरवी ने अंशु को भी सुला दिया और फिर सब बातों के बारे में गहराई से सोचने लगी।